ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 22 श्लोक संख्या है 24। अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। श्री भगवान उवाच। ब्रह्मन् यम् अनुघृणामि तद्विशो विधुनोमि अहम् यत् मदः पुरुषः स्तब्धः लोकं मां च अवमन्यते। श्री भगवान् उवाच। ब्रह्मण्यम् अनुगृह्णामि तद्विशो विदनोमिहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मण्यम् अनुगृह्णामि तद्विशो विदनोमिहम् यन्मनः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मण्यम् अनुगृह्णामि तद्विशो विदनोमिहम् यन्मनः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा ब्रह्मन् हे ब्रह्मा जी यम जिस पर अनुघृणामि मैं दया करता हूँ तत् उसका विषह ऐश्वर्य विधुनोमि छीन लेता हूँ अहम् मैं यत् मदः धन के कारण झूठी प्रतिष्ठा होने से पुरुषः ऐसा व्यक्ति स्तब्ध कुंद बुद्धि होकर तीनों लोक मामशा मेरी भी अवमान्यते हंसी उड़ाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। कृपा करके दोहराएं। भगवान ने कहा हे ब्रह्मा जी ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीन लोकों में मैं किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शन करता हूँ। तात्पर्य सुने दुराइए मत। जो सभ्यता ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई है वह अत्यंत घातक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकवादी इतना घमंडी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता और भगवान की भी सत्ता को नकारता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को उदाहरण बनाते हैं जो अपने समस्त वैभव से विहीन था। भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति बंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीन लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। ऐसे व्यक्ति की सर्वप्रथम सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तो अधिकांश जनता मूर्ख है, जो भी कृष्ण भावना भावित नहीं है वो सब मूर्ख है। कोई बहुत अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं है। और शास्त्र भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वो सब मूर्ख है। हम भी मूर्ख हैं, लेकिन पहले से सुधार हो रहा है। तो मूर्खों की कमी नहीं है समाज में, और हर मूर्ख व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है जीवन का, और वो क्या है? इंद्र तृप्ति करना, वही है उद्देश्य। प्रभुपाद जी ने चार भाग में बांटा है इस पूरे समाज को। वर्णाश्रम धर्म नहीं, वो भी है, लेकिन ये और चार विभाग है। पहला विभाग है लेजी इंटेलिजेंट, दूसरा विभाग है बिजी इंटेलिजेंट, तीसरा विभाग है बिजी फूल, चौथा विभाग है बिजी इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट नहीं, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी इंटेलिजेंट पहले बोल दिया हमने, लेजी फूल भी बोल दिया हमने। पहले हमने बोला लेजी इंटेलिजेंट, फिर हमने बोला लेजी फूल, फिर तीसरा हमने बोला बिजी फूल, चौथा हमने बोला बिजी इंटेलिजेंट, जो भी है। तो लेजी इंटेलिजेंट का मतलब है भक्त, आप सब उम्मीद तो यही की जाती है कि हम सब लेजी इंटेलिजेंट बने। लेजी का मतलब ये नहीं है कि सो रहे हैं हमेशा। लेजी इंटेलिजेंट का मतलब है कि भौतिक कार्यों में हमारी रुचि नहीं है, यह है आलस। भौतिक कार्यों के लिए हम बहुत आलसी हैं, और कृष्ण भावना भावित कार्यों के लिए हम आलसी नहीं, और अधिक से अधिक समय बिताते हैं हम लोग ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए। ज्ञान का मतलब शुष्क ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब है हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये समझने के लिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये ज्ञान है। तो उस ज्ञान की तलाश में हम सब यहाँ भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। कई भक्तों ने जीवन समर्पित किया है, कई प्रयास कर रहे हैं, तो हम सब इसी विभाग में आते हैं। दूसरा विभाग है बिजी इंटेलिजेंट, या बिजी फूल भी कह सकते हैं उनको। बिजी फूल का मतलब ये है कि व्यस्त भी हैं और मूर्ख भी हैं, और ऐसे जो लोग हैं भौतिक कार्यों में लिप्त हैं। उनके जीवन का लक्ष्य हमने बताया जैसे कि इंद्र तृप्ति ही है, दिन रात मेहनत करना गधे से भी अधिक। गधा तो केवल भोज होता है जितना कि आवश्यक है, जितनी जगह है, लेकिन हम तो इतना भोज ढो लेते हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी समय नहीं है, अपने लिए भी समय नहीं है। और ऐसे जो लोग हैं जो बिजी इंटेलिजेंट हैं, या कह सकते हैं बिजी फूल हैं, वो क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, उग्र कर्म में लगे हुए हैं, उग्र कर्म, भौतिक प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, वायु का शोषण कर रहे हैं, जल का शोषण कर रहे हैं, और अन्य व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं, खुद का भी शोषण कर रहे हैं, सबका शोषण हो रहा है। एक दूसरे का शोषण करना ही भौतिक जीवन है। तो उद्देश्य क्या है? उग्र कर्म, क्योंकि उनको लगता है कि वो बिना कृष्ण के खुश रहेंगे। उनको ये एहसास हो गया है कि कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण की आवश्यकता तो उनको है जो इस जीवन से हताश हो चुके हैं। हमारे जीवन में भी कुछ है, हमने बहुत कुछ पाया है, संपत्ति मिली है हमें, धन मिला है, अच्छे कुल में जन्म मिला है, ऐश्वर्य है हमारे पास, बुद्धि है, विद्वत्ता है, सुंदरता है, सब कुछ है हमारे पास। जन्म ऐश्वर्य शुद्धश्री भीरे नबारा मदा पुमान, कुंती महारानी कह रही है ना, तो उसका मद है, इंटॉक्सिकेशन जिसको कहते हैं। यहां पे भी आए शब्द आया है इस श्लोक में भी, यद मदहा, इस धन के कारण झूठी प्रतिष्ठा होने से, तो मद है। और ऐसा मद जब हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं, उसको लगता है कि बाकी सब बेकार है, बाकी सब जो है कोई काम के नहीं है, केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, आज मैंने इतना धन कमा लिया है और अधिक धन कमाऊंगा, ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं इस तरह से हराऊंगा, इसको मैं नीचे गिराऊंगा और मेरी विजय होगी, हर जगह मेरा राज्य होगा, हर जगह मेरी संपत्ति होगी, हर जगह का मालिक मैं बनूंगा, मैं पूरा जीवन इस समय में बीत जाता है। इसलिए आज के समय में आईफोन है, आईपैड है, सब आई है। आई इसलिए है क्योंकि जापान में एक सर्च किया था और फोन कॉल्स में सर्च किया था कि सबसे अधिक शब्द का कौन उपयोग करते हैं, कौन से शब्द का अधिक सबसे अधिक उपयोग होता है, तो उन्होंने पता लगाया आई, मैं शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। देहात्म बुद्धि के कारण इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाती है। ठाकुर भक्तिनों ने लिखा है जैन धर्म में कि बद जीव को जो है 84 लाख योनियों में भेजा जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग एंड हैमरिंग प्रोसेस, तपाना और जोर जोर से मारना। जो सोना होता है उसको शुद्ध अगर करना है तो दो प्रोसेस, जो भी ज्वेलर है, आप ज्वेलर हैं, आपकी ज्वेलरी की दुकान है ना, तो आप जानते हैं कि गोल्ड मर्चेंट जो है वो जानते हैं कि सोने को कैसे शुद्ध किया जाता है, खूब उसको मारा जाता है, उसको तपाया जाता है, ठीक है कि नहीं, तो ऐसा करने से वो सोना जो है और अधिक शुद्ध होगा, राइट। तो इसी तरह से जो बद्धजीव है उनको 84 लाख योनियों में भेजा जाता है तपाने के लिए और गर्म करने के लिए, हीटिंग एंड हैमरिंग प्रोसेस के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है, बद्धजीवात्मा है। तो ऐसे शुद्ध होते होते हम लोग यहां पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, और जो नहीं पहुंचे हैं उनको अभी भी तपाया जा रहा है, खूब लताड़ जाड़ा। जब यमदूत आते हैं पापियों को लेने के लिए तो बहुत बुरी हालत होती है उनकी। हमने सुना था एक प्रवचन में, उस प्रवचन में बताया गया था किस तरह से अगर कोई रास्ते में यमराज जी के यमलोक में जाने से पहले यमदूत जब ले जा रहे होते हैं रेगिस्तान से गुजरते हुए, कहीं पानी नहीं होता है, कोई पेड़ नहीं, कोई पानी नहीं, गरम गरम हवा और रेती भी एकदम गरम गरम, लू चल रही होती है, और ऐसे में अगर वो पापी व्यक्ति पानी मांगता है, जितना वो मांगता है उसको उतना मारा जाता है, जितनी बार मांगेगा, अच्छा इसको पानी पिलाओ, इसको प्यास लगी है, तो दो यमदूत मिलकर खूब मारते हैं उसको, जितना वो डिमांड करेगा उतनी पिटाई होगी उसकी। तुमने मांगा कैसे, और उसके बाद उसको लेके जाते हैं, बहुत गर्मी होती है, भयानक गर्मी होती है, और वैतरणी नदी से लेके जाते हैं, वो वैतरणी नदी खून से लथपथ होती है, उसमें हड्डी मांस मज्जा वीर्य बाल केश सब गिरे होते हैं बस, और ऐसे एक नदी में उसको डुबोया जाता है, लो डूबो निकालो बाहर, फिर डुबो उसको, फिर निकालो, फिर डुबो, जितना वो बचने की इच्छा करता है, जितना बोलता है बचाओ बचाओ मुझे बाहर निकालो, और उसकी पिटाई होती है और खूब मारते हैं उसको यमदूत पकड़ के। यमराज जी तक तो पहुंचे ही नहीं अभी तक, यमराज जी के पास पहुंचने में क्या होगा सोच के देखिए, रास्ते में इतनी पिटाई हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, इंद्र तृप्ति का परिणाम जो है बड़ा भयानक होता है। पाप करना है कर लो, कोई रुकेगा नहीं, नशा करना है कर लो, अवैध संबंध रखना है रख लो, जुआ खेलना है खेल लो, मीट खाना है खा लो, कोई नहीं मना करेगा। और आप सोचेंगे भी कि हाँ देखो कुछ तो नहीं हुआ मेरे साथ, मैं तो रोज ही खा रहा हूं। नहीं, हम तो रोज आते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके हम नॉनवेज खाते हैं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो दिखाई नहीं दे रहा उस अंधे व्यक्ति को, उस पागल व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है उसको अज्ञानता के कारण। लेकिन जब उसका जब परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा तो वो परिणाम जो है प्रचंड रूप में आएगा, और ऐसी हालत होगी उसकी कि नानी भी याद नहीं आएगी उसको। बहुत मुश्किल है, नहीं, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो पापी व्यक्ति के लिए बहुत भयावह स्थिति है ये संसार, भौतिक संसार उसके लिए भय से भरा हुआ है। जो भी कृष्ण भावा भावित नहीं है, ध्यात्मक बुद्धि में है, वो हमेशा भयभीत रहेगा, क्योंकि वह आशाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से भरा हुआ है। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आशा की पूर्ति के लिए, आशाओं की पूर्ति के लिए पूरा अपना जीवन लगा देता है, वो दिन रात मेहनत करता है, बड़ा मुश्किल है। तो ये नशा है, अच्छे कुल में जन्म लेना, कोई पाश्चात्य जगत में जन्म लेता है, अमेरिका यूरोप में, बोलता है आई एम अमेरिकन, नहीं आई एम ब्रिटिश, आई एम अमेरिकन। अमेरिका में जन्म लेने मात्र से ही आपका ईगो बढ़ जाता है, केवल देश में जन्म लेने से ही इतना अहंकार हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है कि और को दिखाई नहीं देता है। अच्छे कुल में जन्म होना, जन्म ऐश्वर्य, बहुत अधिक धन होना, संपत्ति होना। आजकल की संपत्ति क्या है? कागज के नोट, जिसके लिए इतना हाहाकार मच गया कुछ महीने पहले पूरे भारतवर्ष में, उस कागज के नोट के लिए। नहीं, नोटों ने हमें पागल कर दिया, नोट हमें रास्ते में लेकर आ गए, कागज के नोट, धन के लालच के कारण दिन रात मेहनत करता है व्यक्ति और भूल जाता है जीवन का लक्ष्य क्या है। और यही धन है। युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो प्लास्टिक की प्लेट में नहीं प्रसाद परोसा गया था, कागज के प्लेट में प्रसाद नहीं परोसा गया था, या थर्मोकोल, और भी ज्यादा कितना भी निकृष्ट से निकृष्ट जो है हम लोग सामग्री इकट्ठा करके उससे प्लेट बनाते हैं, प्लास्टिक के प्लेट है, कागज के प्लेट है, थर्मोकोल का प्लेट है, कागज की ग्लास है, ये क्या है? ये धन है, ये संपत्ति है, ये ऐश्वर्य है हमारा, ये उन्नति है। सोने के पात्र होते थे, सोने के बर्तन होते थे, सोने की थालियां होती थी, और प्रसाद पाने के बाद उसको संभाल के नहीं रखते थे, फेंक देते थे झूठा समझकर, जानते हैं आप। ये था हमारे देश का ऐश्वर्य, ये थी हमारे देश की संपत्ति, सोने की चिड़िया उसको कहते थे। ये नहीं कि कागज के प्लेट में, प्लास्टिक के प्लेट में खा रहे हो, प्लास्टिक का कंप्यूटर है, सब कुछ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जमाना है। हमने सुना था कलयुग है आयरन एज, कलयुग के लिए कहा जाता है इट्स आयरन एज, शास्त्रों में तक वर्णन नहीं है कि ये प्लास्टिक एज है, शास्त्रों में वर्णन है आयरन एज, ये लोहे का युग है। लेकिन लोहा भी चला गया है, पुराना हो गया और आगे बढ़ गए हैं प्लास्टिक और कागज, कागज के नोट, कागज के ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास, प्लास्टिक की थालियां, बहुत शुचि है, शुद्ध है। इन थालियों में खा के जो है फायदा नहीं होगा, नुकसान होता है। ये धातु, धातु भी नहीं है, ये धातु भी नहीं है। तो ये हालत है, बहुत बुरा हाल है। तो जन्म ऐश्वर्य, शुद्ध श्री, भीर विद्वत्ता, भौतिक ज्ञान प्राप्त करना। आईआईटी में कोई घुस ही गया तो बोलता है आई एम आईआईटीयन, अभी एडमिशन ही लिया है, और आईआईटीयन होके क्या कर रहे हैं, वहां जाकर ड्रग्स ले रहे हैं। आईआईटी हॉस्टल्स में जाके देखिए कितनी भारी मात्रा में, दिल्ली आईआईटी की बात कर रहे हैं, कितनी भारी मात्रा में वहां ड्रग सप्लाई हो रहा, जानते हैं हॉस्टल्स के अंदर कितने लोग वहां पे आत्महत्या कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं, नशे में लगे हुए, ड्रग्स ले रहे हैं, ये आईआईटीयन है। ये हालत, और ये स्कूलों में भी शुरू हो गया है। हम बताया था कनॉट प्लेस, हम वहां पे जगह के लिए तलाश कर रहे हैं ताकि प्रचार हो सके। तो वहां बताया कि एनडीएमसी वालों ने कि वहां पे जहां पे हनुमान मंदिर है उसके नजदीक ही वहां पे बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स सप्लाई होता है युवाओं के लिए। आज भी, आज शाम को जाके देख लीजिए, ड्रग सप्लाई होता है। सबसे अधिक ड्रग एडिक्ट्स हैं कहां जानते हैं? पूरे भारतवर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे अधिक जो है ड्रग एडिक्ट्स हैं। हमने कान से सुना था, एक बार हम जब गए थे कॉलेज में गए थे, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद किरोड़ीवल कॉलेज था या रामजस कॉलेज, उस कॉलेज के रामजस कॉलेज, वो सब एक ही लाइन में है समझ लीजिए। तो वहां पे गए थे तो दो विद्यार्थी आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा, हमने सुना कानों से, हम गुजर रहे थे रास्ते से, वो विद्यार्थी कहता है, दूसरा अपने फ्रेंड को कहता है कि होता है कल ड्रग तो मिला नहीं इसलिए मैं नींद की गोली खा के सो गया। सब बोला हमने सुना कान से सुना हमने कान से सुना। तो ये है हमारी विद्या, ये है ज्ञान, ये है विद्वत्ता। इसके लिए हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, बहुत ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि और अज्ञानता में अपना जीवन बिताए। बुरा ना माने, ये सच। तो कहने का मतलब है आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो किसी को इंसान बनने ही नहीं देती। इसलिए ऐसे लोग जो है बुद्धिमान हो सकते हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन क्या है फिर भी अज्ञानता में है। तो इसलिए क्या है कि आज के समय में सरकार भी जो है, देश के नेता, वो भी इस चीज का बढ़ावा नहीं देते हैं। वृंदावन में जाइए, देखिए आप चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है। दंद गांव की तरफ जाएंगे तो वहां फैक्ट्रियां लग गई है। नवदीप में जाइए, वहां पोल्ट्री फार्म है और कोयले का बिजनेस कर रहे हैं। जहां पे वो है, हम जाते हैं मध्य द्वीप के बाद जो जाते हैं पुष्कर में, हाँ ब्रह्म पुष्कर, वहां कोयले का व्यापार चल रहा है। कई जगह पोल्ट्री फार्म जो है लगाया गया है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। कई ईंटों का बिजनेस शुरू किया गया, कुरुक्षेत्र में ईंटों का बिजनेस कई सालों से वहां चल रहा है। तो देश के नेता और वो भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म को। लोग चाहते हैं कि धाम जो है सारे लुप्त हो जाए, जल्द से जल्द बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, इमारतें हो, बैंक्वेट हॉल्स हो, पीवीआर हो, मॉल्स हो। ये वृंदावन है, वन है कहाँ पर? और दिल्ली वाले वहां जाके बसे हुए हैं, रह भी नहीं पाते वहां पर, क्योंकि 8-8 घंटे जब लाइट जाएगी तो कौन रहेगा वहां, कितना तेल डालते रहोगे जनरेटर में, तो घूम फिर के वापस दिल्ली आ जाते हैं। जितने लोग बीमार पड़ते हैं वृंदावन में सब दिल्ली में आके इलाज करते हैं और आके यही मर जाते हैं। सोच के जाते हैं कि धाम वास होगा और धाम में शरीर छोड़ेंगे, जैसे ही बीमार पड़ते हैं उस सब वृंदावन से वापस दिल्ली आते हैं इलाज के लिए, यही मर जाते हैं, वापस जाने पर। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे। और वो जितने फ्लैट है वृंदावन में लगभग सारे खाली पड़े हैं, बना बना के छोड़ दिए। भजन किसी से होता नहीं है, सब धोखा है, खुद को धोखा दे रहे भजन करेंगे, जा क्या भजन करोगे आप? इतने आलीशान फ्लैट बना के, मकान बना के भजन होगा आपसे? क्या भजन? भोजन भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, वहां जाते समय की बर्बादी है तो वापस आ जाते। एक प्रभुपाद जी को स्टोरी सुनाते, कथा सुनाते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने क्या कि सारा धन जो है अपने परिवार वालों को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया और आगे वृंदावन धाम में रहने भजन करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा यह है फल्गु वैराग्य, क्योंकि उसने धन जो है अपने घर वालों को क्यों दिया, कृष्ण को क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न उठता है। तो इस तरह से लोग अपना समय खराब कर रहे हैं, वृंदावन धाम लुप्त हो रहा है। हरिद्वार जाइए, अंडे बेचे जा रहे हैं वहां पर, जगह जगह पे अंडे मिलेंगे आपको। गंगा जी जहां बह रही है, भगवान के चरणों से निकल रही है गंगा जी, हरिद्वार में दिखाई देती है, दर्शन मिलता है वहां जाके, गंगा स्नान करने जा रहे हैं। और लोगों ने वहां श्राद्ध का व्यापार बनाया हुआ है, जगह जगह अंडे बेच रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं। तो ये हालत है। छठी ग्रह में देखिए, छठी ग्रह शुरू होते ही वहां पे दिखेगा आपको, नहीं देशी शराब की दुकान, भांग की दुकान। तो ये है धामवास। तो ऐसा क्या लाभ बताइए? इसलिए जो है व्यक्ति जो है, इसलिए प्रकृति के द्वारा कष्ट दिया जाता है। तो भगवान जो है प्रकृति के द्वारा ऐसे लोगों को कष्ट देते हैं, कष्ट में डालते हैं, बीमारियां लगती हैं। यमराज जी जो है निर्धारित करते हैं पहले से ही कि किसने क्या पाप किया है और क्या ये बनेगा अगले जन्म और क्या बीमारी लगेगी उसको। हर बीमारी के पीछे एक पाप होता है, गरुड़ पुराण में दिया है। कोई भी बीमारी हमें हो रही है उसके पीछे हमने कोई पाप किया होगा पिछले जन्म में। ये पाप करेंगे तो ये बीमारी लगेगी, ये पाप करेंगे तो ये बीमारी लगेगी। लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। कोई बच नहीं सकता यमराज जी की सजा से, बहुत भयानक दंड मिलता है यमराज जी के द्वारा। जनक महाराज एक बार बैकुंठ जा रहे थे तो रस्से मन सोचा कि पहले हम नरक लोक का दर्शन करते हुए जाएं। नरक पे बेचारे कई पापी जीव जो है कष्ट पा रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उनके हृदय में दया आ गई जनक महाराज, और वहां देखकर देखा, क्या देखा उन्होंने, एक स्त्री का पुतला, उसे आलिंगन कराया जा रहा है एक पुरुष को, और पीछे से लोहे की सलाखें मारी जा रही है, जलती हुई सलाखें। जनक महाराज के आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा कि महाराज ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूं, इतना कष्ट दिया जा रहा है इस जीव को, क्या किया इसने। तो यमराज जी बोलते हैं, आप जानना चाहते हैं, इसे अवैध संबंध रखा था, क्या होगा इसका भविष्य में, अगले जन्म में ये हिजड़ा बनेगा, नहीं अगले जन्म में ये हिजड़ा बनेगा, उसके अगले जन्म में सुअर बनेगा, पहले से निर्धारित कर लिया यमराज जी ने सब कुछ। इतनी भयावह स्थिति है। तो यमराज जी के कहने पर जनक महाराज की आंखों में आंसू आ रहे हैं, इन सब का उद्धार कैसे होगा, ये नरक में जो सड़ रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। यमराज जी कहते हैं कि आपके मुख से अगर राम नाम का उच्चारण सुन ले, शुद्ध नाम का उच्चारण सुन ले, तो इनका उद्धार हो सकता है। वहां भी जनक महाराज जो है राम नाम का कीर्तन करते हैं, और जितने भी नरकवासी होते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। एक वैश्व की कृपा देखिए, दया देखिए उनके, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, थोड़े से सुख के लिए कितना भारी कष्ट उठाना पड़ता है, देखिए भविष्य में। फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आती है, फिर भी वही गलती करते हैं, पुनः पुनः चरवित चरना आराम, वही कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं गलती, पता नहीं क्या है। एक बद्ध अवस्था में जैसे पहुंचते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है कि कहीं ना कहीं घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, कोलू के बैल की तरह, बहुत बुरा हाल। तो इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भी, दशम स्कंध के 88वीं अध्याय में, 88 चैप्टर में, वहां परीक्षित महाराज ने सुदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो बड़े गरीब लाचार दिखाई देते हैं, जैसे सुदामा ब्राह्मण, कुछ नहीं था उनके पास, फटे पुराने कपड़े, गरीबी छाई हुई थी, रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं था, ये कृष्ण के भक्त हैं। और महादेव के भक्त वो बड़े धनी होते हैं, सर्व संपन्न होते हैं, ऐश्वर्य होता है, स्वयं महादेव पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके भक्त जो है सर्व संपन्न होते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं, द्वारका में महलों में रह रहे हैं, उनके भक्त कुटिया में रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो फिर जो है उन्होंने ये बताया, कथा सुनाई, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि यही इसी तरह का प्रश्न जो है पांडवों ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने कहा, पांडवों ने कहा कि हम आपके भक्त हैं, और भक्त होने के बाद इतने शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतना कष्ट क्यों पा रहे हैं, क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक का उदाहरण उच्चारण किया था, यस्याहम अनुग्रामि हरिष्ये तद्धनम शनै ततो धनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। क्या बात बोली है भगवान श्री कृष्ण, किसी के ऊपर जब विशेष अनुग्रह करता हूं मैं, विशेष जब उसके ऊपर कृपा करता हूं, तो क्या करता हूं, उसका सारा धन छीन लेता हूं, लेकिन धीरे धीरे, एक साथ नहीं, शनै शनै, तद धनम शनै, धीरे 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 उसका सारा धन मैं छीन लूंगा। कौन बनेगा कृष्ण भक्त बताइए, कोई बनेगा? आपका सारा धन धीरे धीरे छीन लेंगे तो सोचना पड़ेगा अगली बार कि यहां पे मंदिर में आना चाहिए कि नहीं, खतरा तो है, देखिए खतरा है, कृष्ण के पास आने में खतरा है, सावधान रही। इसलिए कोई देवी की उपासना करता है, वैष्णो देवी जाना चाहता है, तो वहां पे हम मना नहीं करते जाने के लिए, लेकिन जब इस्कॉन के मंदिर पर कोई आना चाहता है, और विशेष रूप से यहां पर जहां इतने सारे बैठे हैं भक्त प्रचार करने वाले, तो इन लोगों से डर लगता है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, हम सबसे छीन लेंगे। कृष्ण थोड़ा सीधे छीनने वाले ये है एक्चुअली, वास्तव में कृष्ण इनको माध्यम बना रहे छीनने के, और ये स्वयं उदाहरण है जिनका सब कुछ छीना हुआ है, फिर भी देखिए कितने खुश लगते हैं, ये समझ में नहीं आया। सब कुछ छीनने के बाद तो व्यक्ति दुखी होता है, ये सुखी है, ये देखिए कितनी बड़ी बात है, सर में बाल नहीं है इनके, कपड़े एक ही जैसे पहनते, 365 दिन एक ही रंग का कपड़ा, और उससे पहले जो नए भक्त बनते तो पीला कपड़ा पहना जाता है, वो तो और भी बुरी हालत है। पीला कपड़ा 365 दिन पहनना ये बहुत बड़ी सजा है। बेचारे थे अच्छे अच्छे घराने से, इंजीनियर्स हैं, बीटेक है, एमटेक है, आईआईटीएन है, या एनआईटी से किया है, इंजीनियरिंग किया है, और इतने क्वालिफाइड होने के बाद यहाँ का पीला कपड़ा पहन रहे 365 दिन, और क्या कहा जा रहा है, टॉयलेट साफ करो, बर्तन साफ करो, मंदिर साफ करो, सड़क पे किताबें बेचो, लेकिन सब कुछ ये करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ये जो आनंद जो इनको मिल रहा है, ये आनंद को जो है पूरे संसार की संपत्ति से भी नहीं खरीदा जा सकता है। बलि महाराज को यही, बलि महाराज को यही भगवान बाबा देव बोल रहे हैं, क्या दोगे आप मुझे, क्या देना चाहते हैं आप, इच्छाओं का कोई अंत है क्या? तीन पग जमीन मांगा है, यही बहुत है, सोच लो। इच्छाओं का कोई अंत है क्या? आप मुझे बहुत कुछ देना चाहते हैं, स्वर्लोक का सुख देना चाहते हैं, आप कह रहे हैं सारी दिशाएं ले लो मुझसे, स्वर्लोक ले लो मुझसे, सब कुछ ले लो, लेकिन क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि ये सब मिलने के बाद भी मेरी इच्छाएं जो है नहीं रहेंगी, इच्छाएं मेरी शांत हो जाएंगी, क्या मैं और आपसे नहीं मांगूंगा क्या फिर मैं कब? इसलिए जिससे जितना मैं आप सभी मांग रहा हूं उतना ही दीजिए। तो ये तो कहने का मतलब ये है, बड़ा कठिन है ये रास्ता भक्ति का मार्ग। और इसी श्लोक के तात्पर्य में चक्रदीप विश्वनाथ जी के ठाकुर ने बहुत सुंदर टीका दी है, वो ये कहते हैं कि कोई भक्ति के किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, हर स्टेज में, हर स्तर में भगवान श्री कृष्ण ही हमें कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल उत्तम वैष्णव या उत्तम अधिकारी को कष्ट दे रहे हैं, नए नए जो भक्त हैं जैसे वो आते हैं भक्ति में लगते हैं उनको कष्ट देना शुरू कर देते हैं। कष्ट देने की डिग्री अलग होती है, ये नहीं कि इनको शुरू में ही आप कैंसर दे देंगे, छोटी छोटी बीमारियों से शुरू करेंगे, डॉक्टर के पास जाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, दवाई खाते रहो फिर भी बीमारी लगेगी, क्योंकि आपकी इलाज, आपकी बीमारी का इलाज जो है डॉक्टर के पास नहीं है, आपकी बीमारी का इलाज केवल कृष्ण के पास है, क्योंकि उन्होंने आपको बीमार करके रखा हुआ है। तो इतना आसान नहीं है ठीक होना, इसलिए बेचारे जो जितने भी भक्त आते हैं हमारे आंदोलन में एक एक करके सब बीमार होने लग जाते हैं, क्या बात है यार, जब बाहर रहे थे इतने स्वस्थ थे, यहाँ आने के बाद कैसे बीमार हो जाते हैं, यहाँ का हवा ठीक नहीं, यहाँ का पानी ठीक नहीं, यहाँ का ये ठीक नहीं, ये सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो उनकी कृपा है उसमें हो रहा है सारा कुछ, सब कुछ ठीक है। कभी ऐसा ना सोचे कि हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, वो सब तो है, हवा तो ठीक नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये सोचे कि उसके वजह से बीमारी हो रही है, नहीं नहीं, ये नहीं है कारण, कारण बता रहे हैं चक्रदीप, बात कहते हैं कारण है कृष्ण, सर्व कारण कारण, इसीलिए बोला गया है ब्रह्म संहिता में, सर्व कारण कारण का मतलब यही है कि हमारे जो रोग का कारण भी वही है, भक्त के लिए कह रहे हैं, भक्त के लिए। तो भक्तों को बीमार रखते हैं भगवान ताकि आप विनम्र बने, हम सब विनम्र बने, जितना सुखी रहेंगे उतना आसक्त हो जाएंगे संसार से, सब कुछ अच्छा चलेगा तो क्यों आएंगे मंदिर। कितने धनी लोग आते हैं, बहुत कम धनी लोग आते हैं यार राधिका रमन जी का दर्शन करने, जिनके पास सर्व संपन्नता है, बहुत अधिक धन है, वो क्यों आएंगे, वो सोचते मुझे जाने की क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो सब कुछ है। तो ये अहंकार हो जाता है, तो इस अहंकार को खत्म करना चाहते हैं भगवान, एक चीज कतई पसंद नहीं करते हैं और वो है अहंकार, भक्त का अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं करते भगवान। और अहंकार जिस किसी कारण से हो रहा है उस कारण को भगवान जो है खत्म कर देते, ये उनकी कृपा है। लेकिन किनके लिए ये भी बताया है उस तात्पर्य में, इस तात्पर्य में ये भी बताया है, ये उनके साथ करते हैं, उन भक्तों के लिए करते हैं जो भक्त जो है हृदय से भक्ति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं भक्ति करना, जो चाहते हैं कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, उनको अधिक से अधिक बीमार रखा जाता है। उनको अनासक्त के कई अनासक्त होने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके लिए। तो प्रभुपाद जी वृंदावन धाम में थे, प्रभुपाद से पहले ऑफकोर्स पहले वहां थे, प्रयाग में थे, इलाहाबाद में था उनका बिजनेस था प्रयाग फार्मेसी के नाम से। और प्रभुपाद जी के जन्म पत्री में लिखा था कि अगर ये धन कमाना चाहें तो बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों में इनका नाम आएगा। और प्रभुपाद जी का बिजनेस बहुत एक्सपैंड हो रहा था, काफी धन आने लगा और प्रभुपाद सक्सेसफुल हो रहे थे बिजनेस में। यहाँ तक कि उनके दुकान में ऐसे ऐसे लोग आते थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब आके भी खरीदते थे, इम्पोर्टेंट टूथब्रश लेके जाते थे। प्रभुपाद ने कन्वर्सेशन में कहा है कि ये लोग हमेशा भारत भारत करते रहते हैं, लेकिन जब भी मेरी दुकान में आते हैं तो उनको सब कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए, विदेशी चाहिए, विदेशी दवाई चाहिए और टूथब्रश भी विदेशी चाहिए, यही दोनों। प्रभुपाद खुद बोले, कन्वर्सेशन में बोल रहे प्रभुपाद कि मेरी दुकान में आते थे और मांगते थे सब कुछ इम्पोर्टेंट, सब कुछ विदेशी। तो प्रभुपाल को सूचना मिली कि एक दिन उनकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, सब कुछ लूट गया, कई लोगों ने शीटिंग किया और धीरे धीरे संपत्ति उनकी सारी हर ली गई। तो प्रभुपाल ने यह श्लोक उद्धरण किया था, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत धर्म शरणं। चिट्ठी पढ़ के प्रभुपाल को चिट्ठी मिली, प्रभुपाल चिट्ठी पढ़ के बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप मैं समर्पित हो सकता हूँ राधा कृष्ण की सेवा में। प्रभुपाल जी का विचार क्या था पहले कि मैं अधिक से धन कमा लूं और धन कमाकर मैं क्या करूंगा, प्रचार करूंगा। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, धन कमाने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाओ, सही समय पर जब धन देना होगा मैं दूंगा, अभी धन कमा के समय खराब मत करो। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम में थे, संन्यास लेने के बाद वृंदावन चले गए थे। वृंदावन में उन्होंने एक भजन लिखा था, भजन की पंक्तियां इस प्रकार से है, आई एम सिटिंग अलोन इन वृंदावन धाम, मैं वृंदावन धाम में अकेले यहां में बैठा हूं। इन दिस मूड आई एम गेटिंग मेनी रियलाइजेशन, और इस भाव में मुझे कई साक्षात्कार हो रहे हैं। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, नहीं तो इनका कोई विशेष लाभ नहीं है हम। और इस भौतिक प्रकृति का नग्न सत्य मुझे दिखाया श्री कृष्ण ने, उनकी कृपा से इन सब में मेरी रुचि खत्म हो गई है। प्रभुपाद लिख रहे हैं टेस्टलेस हो गया है बिल्कुल। फिर श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत धनं शरणं, कि जिसके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ मैं धीरे धीरे छीन लेता हूं, ये कृपा को मैं कब समझ पाऊंगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं वह सबसे अधिक कृपालु है, उनकी इस कृपा को कब मैं समझ पाऊंगा। सबने मुझे छोड़ दिया है, जैसे आप यहां आते हैं भक्तों के संग में आते हैं धीरे धीरे लोग छोड़ने लगते हैं आपको, आपके अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, आपके कितने मित्र जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ते थे या स्कूल में आपके साथ पढ़ते थे, वो सब आते हैं आपके पास, वो सबको पता लग गया कि आप लोगों की क्या हालत है, अभी कोई नहीं आएगा आपके पास, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके रिश्तेदार भी तो वैसे भी नहीं आते हो, आते रिश्तेदार तो ये सब सब के सब दूर भागेंगे आपसे, जैसे ही कृष्ण भक्त बने लगेंगे सब आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि उन सबको डर है, क्योंकि आपके संपर्क में रहने का मतलब है उनकी भी हालत आपके जैसे हो जाए, इसलिए वो लोग आपसे दूर भागेंगे, नहीं नहीं इनके पास नहीं जाना, दूर से इनको हरे कृष्णा कह सकते हैं। तो ये फिर आगे बता रहे हैं, सबने जो है मेरा तिरस्कार कर दिया है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, पति, रिश्तेदार, मित्र, भाई ये सब कष्ट देने वाले हैं, ये सब मेरे लिए एक हंसी का कारण बन गए हैं, ये सब सोच के मैं केवल हंस रहा हूं, ये सब देखकर, ये सब सोच के अया अकेला बैठा हूं और जोर जोर से हंस रहा हूं, इस माया संसार में मैं किससे वास्तव में प्रेम करता हूं, मेरे वो पिता कहां है, माता क्या है, वो सारे मेरे बुजुर्ग कहां है, मेरे अपने मित्र कहां हैं, उनके बारे में मुझे आप कौन बताएगा, और ये जितने भी परिवार के सिद्ध है, सदस्य हैं, इनके केवल मेरे पास नाम ही रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया, केवल नाम ही रह गया है। और फिर क्या बता रहे हैं, जैसे कि समुद्र का पानी वापस दोबारा समुद्र में मिल जाता है, कि माया का संसार बिल्कुल वैसे ही है। कोई किसी का माता नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। जिस तरह से समुद्र में कई बार झाग निकलती है और झाग कुछ समय तक ही रहती है, फोम कुछ समय के लिए ही रहता है, और उसके बाद जो ये समुद्र का जल है वो समुद्र में मिल जाता है। ये शरीर ये पंच धातु से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ है। कितने शरीर ये जीवात्मा बदल चुका है, और ये रिश्तेदार है, हम सबके रिश्तेदार हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सब आपके रिश्तेदार हैं, सब आपके भाई हैं, क्योंकि ये रिश्ते जो है माया के द्वारा प्रभावित नहीं है। पर भगवान सभी की आत्मा है, उनसे संबंध जब साबित करेंगे वो रिश्तेदार, उनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब रिश्तेदार हैं हमारे, वो कभी जो है हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और तब वास्तव में हम एक साथ रह पाएंगे संगठित होकर। जीव जब कृष्ण को भूल जाता है तो माया उसको जो है ग्रस्त कर लेती है। तो प्रभुपाद ने इस तरह से कविता लिखी थी, और प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं कि ये विशेष कृपा है भगवान की, विशेष कृपा है कृष्ण की कृपा। ऐसी कृपा जब होती है तो हम मजबूर हो जाते हैं शरणागत होने के लिए। इसी कुंती महाराण इसलिए प्रार्थना कर रही है, विप्रधात शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवत दर्शनम श्याद अपुनर्भवत दर्शनम। पांडवों को बहुत कष्ट दिया गया, प्रहलाद महाराज को कष्ट दिया गया, पांडवों को लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया गया, पांडवों को जहर दिया गया, द्रौपदी जी का अपमान हुआ, कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लेना पड़ा, उनका राज्य छीन लिया गया, उनको वनवास में जाना पड़ा। कुंती महारानी और कष्ट मांग रही है। जब यह सब होने के बाद महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे थे, तब कुंती महारानी ने यह प्रार्थना कही थी, तो अब आप जा रहे हैं क्योंकि अब कष्ट नहीं है, तब कष्ट था तो आप हमारे साथ थे, तो अच्छा है कि और कष्ट दीजिए ना हमें, क्योंकि कष्ट देंगे तो आपका स्मरण करेंगे हम लोग, और आपका स्मरण जब होगा तो दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा, हमें आप कष्ट दीजिए। इसलिए जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कष्ट के लिए इंतजार करते हैं, कष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ी प्रार्थना है, और हमें कष्ट दीजिए ताकि हम आपको याद कर सकें, आपको याद कर सकें, हम हमेशा कृष्ण भावना भावित रहे आपका चिंतन करके। जब कष्ट नहीं होगा तो माया का चिंतन होगा, आपको भूल जाएंगे हम, कुछ भी याद नहीं रहेगा कृष्ण के बारे में। इसलिए बार बार हमें दंडित करिए, बार बार हमें कष्ट दीजिए, बीमार करिए हमें और रोक दीजिए, सब कुछ लूट लीजिए, हमारा धन कुछ परिवार सब कुछ लूट लीजिए। हम जब असहाय अवस्था में होंगे हाथ खड़े होके आपके सामने कर्दन करेंगे, हृदय से प्रार्थना निकलेगी, नहीं तो केवल श्लोक याद करने से क्या फायदा। हृदय से जब तक प्रार्थना नहीं निकलती, हृदय से प्रार्थना कब निकलती है, जब हम असहाय अवस्था में होते हैं, जब कष्ट में होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं हम लोग, तब हम लोग प्रार्थना कर पाते हैं। तो इसलिए एक कष्ट दिया जाता है, जैसे पिता के द्वारा भी कष्ट दिया जाता है बच्चे को, कैसे एक छोटे बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है उसके लिए बहुत कष्ट है, या कोई बीमार व्यक्ति को इंजेक्शन लगा जाता है उसके लिए कष्ट है, लेकिन उसका उसी में ही भला है, ये कौन जानते हैं, पिता जानते हैं, डॉक्टर जानता है। यदि इलाज कराया जाता है तो बहुत कष्ट होता है, उस इलाज में बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो मरीज जानता है कि जो कष्ट दिया जा रहा है ये मेरे भले के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हमें भगवान जो है शाश्वत आनंद देना चाहते हैं, शाश्वत सुख देना चाहते हैं। छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर देंगे तो आपको यहां रहने की इच्छा बन जाएगी, आप यहां रहना चाहोगे, फिर भूल जाओगे कृष्ण को। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की कथा है कि जैसे एक व्यक्ति एक भक्त था जगन्नाथ जी का, वो इतना बीमार पड़ गया और बेड रिडन हो गया, बिस्तर में लेटा रहता था, वहीं मलमूत्र त्यागता था वो, और लेकिन जब प्रातः काल देखता था कि उसके बिस्तर की कोई सफाई करके जाता था और कमरा भी साफ कर देता था, उसको लगता कि कौन रात को आता है और मेरा मलमूत्र भी साफ कर रहा है, कौन करता है ये। तो एक दिन उसने सोने का नाटक किया, आंखें सिर्फ बंद हुई हुई थी, सो नहीं रहा था वो, उसको आवाज सुनाई दी कोई सफाई कर रहा है। रात के करीब 12 बजे थे, तो लगा उसको कि आसपास ही है और बिस्तर के आसपास ही है, तो थोड़ी सी आंखें खोल कर उसने क्या किया, उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम, रात को रोज आते हो यहां पे? और जब देखा ध्यान से और दिया जलाया प्रकाश के लिए, तो क्या देखा, उन्होंने सामने जगन्नाथ जी खड़े। जगन्नाथ जी रोज आकर जो है उस भक्त का मल मूत्र साफ करते हैं। तो जगन्नाथ जी से भक्त कहता है, जगन्नाथ जी आप चाहते हैं कि मैं नरक जाऊं? आप मेरा मल मूत्र साफ कर रहे हैं, इससे अच्छा मुझे ठीक ही कर दीजिए, वो जाना अच्छा नहीं होगा, आप मुझे ठीक कर दो, ये मल मूत्र आप साफ करेंगे जगन्नाथ जी तो क्या होगा मेरा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो फिर जगन्नाथ जी जानते क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं थोड़ा मल मूत्र इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि तुम आज से बीमार ही रहते हो, स्वस्थ कर दूंगा तो तुम मेरे पास नहीं आओगे अगले जन्म में, स्वस्थ तो मैं दो क्षण में कर, एक क्षण में कर दूं तुम्हें स्वस्थ, भागने दौड़ने लग जाओगे, फिर प्राणायाम करने लग जाओगे, फिर महाप्रसाद भी खूब पाओगे मेरा, लेकिन फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर अभी कष्ट पालोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं तो निश्चित रूप से तुम अगले जन्म में मेरे पास आने वाले हो। यह है कृपा, यह है विशेष कृपा जगन्नाथ जी। ऐसे जगह जाए, ऐसे धाम में जाए जहां कोई बीमारी नहीं है, जहां कोई कष्ट नहीं है। तो यह एहसास दिलाने के लिए कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार नश्वर है और इस संसार में केवल दुख है, यह दुखालम है, इस बात की अनुभूति कराने के लिए भगवान जो है हमें कष्ट में रखते हैं और सब कुछ हमसे धीरे धीरे छीन लेते हैं। हमारे साक्षात्कार के अनुसार सबसे सब कुछ नहीं छीनते हैं भगवान, ये भक्ति का स्तर देखा जाता है, उस भक्त का स्तर क्या है, ऐसा नहीं कि छीन ले भाग जाए माया में चला जाए, वो नहीं, इतना नहीं छीनेंगे कि आप कृष्ण को छोड़ के वापस माया में चले जाए, तो आपका लेवल देखकर आपसे छीनेंगे, आपकी भक्ति को देखकर आपसे छीनेंगे। तो इससे क्या होता है, हम समर्पित होते हैं और जैसे समर्पित होते जाएंगे हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी और सर समझ में आएगा धीरे धीरे ये करने वाले कृष्ण हैं, देने वाले कृष्ण हैं और लेने वाले भी कृष्ण हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस बात को समझा, कब जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने इस बात को एहसास किया, देखो मेरा कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं बचा था, अकेले घूम रहा था मैं वृंदावन में भिखारी की तरह, आज देखो इतने सारे शिष्य, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतना प्रचार, इतना कुछ दे दिया मुझे कृष्ण ने, इतना बड़ा परिवार दे दिया मुझे, वो परिवार छीन के मुझे कृष्ण ने क्या किया है, पूरे विश्व भर में जो है संतानें दे दी, कितना बड़ा परिवार है मेरे पास। तो कहने का मतलब है जब लेते हैं, तो कहने का मतलब है जब कुंती महारानी कह रही है प्रार्थना में नमो अकिंचन वित्ताय या त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन वृत्ति या अकिंचन वित्ताय, यानी कि जिसके पास ये अकिंचन भाव है, ये नहीं कोई सड़क के पास गरीब व्यक्ति है झुकी झोपड़ी में रहता है तो वो अकिंचन वित्ताय हो गया, नहीं, कहने का मतलब है ये भाव होना चाहिए हमारे अंदर कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। तो धनी व्यक्ति भी अकिंचन वित्ताय हो सकता है, धनी व्यक्ति भी अकिंचन हो सकता है और गरीब होकर भी कोई अहंकार हो सकता है किसी को, ये संभव है। सामान्य रूप से धनी व्यक्ति जो है अहंकार होता है और गरीब व्यक्ति जो है विनम्र होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके पीछे जो भाव है वो अकिंचन भाव होना चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी जो है हम इस बात की अनुभूति करें कि मेरा कुछ नहीं है, अगर मुझे कुछ मिला भी है ये गुरुदेव की कृपा से मिला है, ये कृष्ण की कृपा से मिला है, ये उनकी संपत्ति है, ये उनका राज्य है, ये सब उनके हैं, आप सब उनके हैं, मेरे उपभोग के लिए कुछ नहीं है, कृष्ण है भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोकमहेश्वर। तो बलि महाराज के माध्यम से भगवान वामन देव ये शिक्षा दे रहे हैं हमें कि बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, सर्वस्व छीन लिया बलि महाराज का, पूरी तरह शरणागत हो गए बलि महाराज, तो ऐसा अवसर हमें मिलता, अगर ऐसा अवसर अगर मिलता है, ऐसी कृपा हमें मिलती है, तो हमें हृदय से ऐसे अवसर का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उस समय जो कृष्ण भावना का हमारा विकास होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी तेजी से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इंद्र को अहंकार हुआ, गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के अहंकार को छीन लिया, नहीं, गजेंद्र जो है उस जल के भीतर क्या करने गया था, पिकनिक मनाने गया था अपने परिवार के साथ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब उसको याद आई प्रार्थनाएं कौन सी जो उसने पिछले जन्म में याद की थी। देखिए कष्ट देने का क्या फायदा हुआ, पिछले जन्म की प्रार्थनाएं याद आ गई उस गजेंद्र हाथी, और स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए उनकी रक्षा के लिए। अगर मगरमच्छ से नहीं पकड़ा होता तो भगवान क्यों आते दर्शन देने। तो भगवान ने देखा ये गजेंद्र मेरा भक्त था, मेरी प्रार्थना करता था, मेरे से मेरे लिए प्रार्थना स्तुतियां करता था पिछले जन्म में, और ये क्या, ये अपने परिवार के साथ यहां पर इस नदी में तालाब में पिकनिक मनाने आया, व्हाट नॉनसेंस, छीन लो सब कुछ इसका। मगरमच्छ को भेज दिया, नीचे से पांव पकड़ लिया उसे, वो जो प्रार्थना करने लगा फिर। और गजेंद्र जब ये प्रार्थना की तो फिर क्या हुआ, भगवान श्री हरि जो है गरुड़ जी में बैठ के आए, और गजेंद्र ने क्या किया, सर्वस्व दे दिया अपना और कमल का फूल अर्पित किया भगवान को। तो ये है पॉइंट, समझने वाली बात ये है कि जब इस प्रकार कृपा होती है भगवान की, तो उस कृपा को हमें बहुत खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। नल कुंवर मणिग्री कुबेर के पुत्र है, नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि क्या हो रहा है, कुबेर थे बड़े देवता है, महादेव शिव जी के मित्र हैं, भक्त हैं उनके, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मंदाकिनी नदी में जो है नग्न स्नान कर रहे हैं अप्सराओं के साथ। नारद जी तब कहते हैं वहां पे, क्या कहते हैं नारद जी, कि धनी व्यक्ति का संग करना जो है इतना लाभकारी नहीं है, गरीब व्यक्ति कैसा भी उसका संग करने से हानि नहीं होगा, आप ये धन जो है मदोन्मत कर देता है, ऐश्वर्य मदोन्मत कर देता है, भूल जाते हैं आप वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है। स्वर्णलोक में इतना भोग के लिए इतनी सामग्री, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम दया प्रतचेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विद्या थे, व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं बन पाते हैं स्वर्णलोक में, इतना ऐश्वर्य वहां पर नंदन कानन है, स्वर्णलोक की अप्सराएं है, नहीं दुर्गंध नहीं आता शरीर से, और जो भी आप पाते हैं खाते हैं वो सब खून में बदल जाता है, शौच की आवश्यकता नहीं है, कोई वहां पर स्वच्छ अभियान नहीं है स्वर्णलोक में, वैसे स्वच्छ है वहां पर सब कुछ, पुष्प की माला कभी मुरझाती नहीं है, और हजारों हजारों वर्षों तक आप इंद्र तिथि में लगे रहेंगे, विशेष कोई रोग लगता नहीं है, और अगर कोई अगर आक्रमण भी करता है असुर, आप घायल भी हो जाते हैं तो तुरंत वहां पर अश्विनी कुमार है, वहां के वैद्य है, तुरंत आपको ठीक कर देंगे उसी समय, फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट है सब कुछ, ऐसी सुविधा है, इतनी सुविधा है कि आप क्यों याद करेंगे भगवान को, बताइए वहां पे कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको, भूल जाएंगे, ये लो आपकी थैली, ये लो आपकी माला, मुझे कुछ याद नहीं है, सब दे देंगे आप, सर्वस्व दे देंगे माया को, वहां जाके भजन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो यहां पर स्वर्ग लोक में इसलिए नारद जी जैसे देव ऋषि, नारद मुनि या फिर दुर्वासा मुनि या ऐसे जो ऋषि मुनि आते हैं और शाप के माध्यम से शिक्षा देते हैं, क्योंकि कर्म भूमि तो है नहीं, वो तो भोग योनी है, देवता की योनी, पशु योनी और देवता की योनी भोग योनी है, तो इसलिए वहां कर्म बंधन है नहीं, इसलिए वहां शाप दिया जाता है, शाप देकर सुधारा जाता है। तो वहां देव ऋषि नारद आए, शाप दिया उनको नलकुंवर और मणिग्रीव को, ये क्या ऐसे यहां पर खड़े हुए हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, कुबेर के पुत्र हो और निर्लज हो गया स्नान कर रहे हो, जाओ पेड़ बन जाओ। लेकिन नारद जी ने जो श्राप दिया वो उनकी कृपा थी, छीन लिया उनको, उनका स्वर्ग लोक का सुख छीन लिया नारद जी ने, लेकिन उनको कहां मिला स्थान, नंद महाराज के घर पे अर्जुन वृक्ष के रूप में 36,000 साल के लिए खड़े रहे, 100 दिव्य वर्षों के लिए खड़े रहे नंद महाराज के घर, और वहां पर जब भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया था उनको, उस वृक्ष को, वृक्ष को गिराया था वृक्षों को, तो वहां पे टीकाकार लिखते हैं कि भगवान ने कहा नल को और मणिगिरी को कहा कि ये मत सोचना कि तुम्हारे भजन के प्रताप से मैं यहाँ दर्शन दे रहा हूं। मैं दर्शन दे रहा हूं इसलिए क्योंकि नारद जी ने वचन दिया है। नारद जी ने कहा था कि आपको दर्शन मिलेंगे नंद महाराज के घर में भगवान श्री कृष्ण के, वो आपको उद्धार करेंगे, इसलिए मैं दर्शन दे रहा आपको क्योंकि नारद जी ने कहा। इस वजह से ये शुद्ध भक्त का प्रभाव होता है, शुद्ध भक्त की कृपा से असंभव कार्य भी संभव है। तो भजन तो इतना परिपक्व हुआ नहीं था उनका, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, नारद जी की कृपा से अब उनको मौका मिला स्वर्गलोक में जाकर। वो अब जाके भजन कर रहे हैं, वहां से फिर वो धाम गए। जी गोस्वामी लिखते हैं गोपाल शंभू में, तो भगवान छीनते हैं, बहुत कुछ छीन लेते हैं हमारा, और छीनने के बाद जब वो देते हैं वो उनकी कृपा होती है और उस कृपा का लाभ उठा लेंगे हम लोग। अगर हम लगे रहेंगे, टिके रहेंगे उस कृपा को कृपा समझ के, तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्रेमय सेवा प्राप्त होगी। इससे ऐसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए जब कष्ट आते हैं, विशेष रूप से भक्तों को। उस समय हमें अन्य भक्तों का सहारा लेके, साधु शास्त्र का सहारा लेके, ये के प्रकार हमें भक्ति में टिके रहना चाहिए। बहुत सारी अड़चने आएगी, मन की समस्या बहुत होगी, मन की समस्या भी बहुत सारी होती है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जब भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं तो हमारा यश फैलता है, तो वो भी है, वो भी एक आसक्ति है। कृष्ण देखते आ रहे हैं भक्त बड़ा यशस्वी हो रहा है, अहंकार बढ़ गया है इसका दिन प्रतिदिन, नहीं अपने आप पता नहीं क्या सोच रहा है जो नहीं है, तो इसको मैं जैसे लाइन में लाना चाहिए मुझे। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे भक्तों की व्यवस्था करते हैं जो उनकी निंदा करते हैं, तो इस तरह से संतुलन बनता है। ऐसे वातावरण में फिर हमें कृष्ण भेजते हैं जहां पे कुछ बुराई करने वाले भी होते हैं हमारी और तारीफ करने वाले भी होते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। तो एक समय एक जगह जाके हमें बहुत प्रशंसा सुनने को मिलता है, और जैसी जब आते हैं दूसरी जगह पे तो खूब बुराई सुनने को मिलता है। बोलते ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ सोचा था, ये सारा उतार दिया मेरा अहंकार। इसलिए भक्त जब हमारी बुराई करते हैं ये उनकी कृपा है, क्योंकि वो भक्त जो है हमारे असली मित्र है जो हमारी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी जो हमारे जो अहंकार है, हमारे जो घमंड है उसको छीन रहे हैं। वो नहीं जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और वो प्रशंसा करके हमें जो है गुब्बारे की तरह फुला देते हैं और हम सोचते हैं कि वास्तव में जो कह रहे हैं वही हूं मैं। सोचते हैं ना हम लोग, ये लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ये वास्तव में मेरी पहचान है, ऐसा सोचने लग जाते हैं। सूक्ष्म रूप में हमारी चेतना में प्रवेश कर जाता है, तो कृष्ण देख रहे हैं सब। जहां अहंकार बढ़ा कृष्ण के डंडे वहां पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वास्तविकता नहीं है, वो वास्तविकता है ही नहीं। आप देखिए जैसे भगवान गीता में उतारे, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार गुण आत्मा कर्ता इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हम लोग नियंत्रित है, हमारा नियंत्रित है किसी ना किसी देवता के द्वारा। आप हाथ भी नहीं उठा सकते हैं अपने आप, ये इसके पीछे में एक देवता है। चल भी नहीं सकते हैं, उसके पीछे में एक देवता है। पलकों को झपका भी नहीं सकते हैं, पलकों के लिए भी एक देवता है। पलकों को खोलने के लिए, बंद करने के लिए एक देवता है। पलके ही टिकी रह जाएंगे आपकी, ऐसे ऐसे हो जाएंगे हम लोग, हाथ ऐसे हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये एहसास होता है जब बीमारियां लगती है, किसी को लकवा मार जाता है वो हाथ ही नहीं उठा पाता है। जैसे बताया था मोहम्मद अली क्या कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट बोलता था ना, वो बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन आखिर में उसको पार्किंसन की बीमारी हुई तो वो कभी नहीं उठा पाता था। तो उसको एहसास हुआ, उसने बोला कि आखिर समय बोला उसने कि आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट, उसने बोला आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट। तो कृष्ण की कृपा जब होती है उस कृपा को हमें स्वीकार करना चाहिए उस समय। जैसे कि भागवत में लिखा है, पूर्वजन की कथा में लिखा है कि जो नेत्र है इन नेत्रों के द्वारा देख कर पाते हम सूर्य के प्रकाश के कारण। हमारी देखने की शक्ति जो है वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर है, तो हम पूर्ण तरह से निर्भर है प्रकृति के ऊपर इस शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए। इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब कर्म किए जाने होते हैं तो वो कर पाते हैं हम लोग ये देवताओं के कारण। और देवता जो है वो देवता गणेश भगवान के अधीन है। तो जहां कृपा हो जाती है वहां पर संभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के कृपा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। ये कृपा होगी तो फिर कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है। एक आपको कथा बताते हैं बहुत बढ़िया। प्रभुपाद जी के शिष्य है पृथु प्रभु, जानते हैं वो जर्मनी से है। तो वो एक बार जर्मनी में थे और एक बहुत बड़े फिलोसफर थे हिनीगर, उनका नाम बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का फिजिक्स में। तो प्रभुपाद समय श्याम सुंदर प्रभु हाइगरी प्रभु से उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे वेस्टर्न फिलोसफीज को लेकर। एक बुक भी पब्लिश हुई थी डायलेक्टिक स्पिरिचुअलिज्म, जिसमें वेस्टर्न फिलोसफर्स के साथ डिस्कस किया, उसके बारे में डिस्कस किया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये हिनीगर जो फिलोसफर है मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभु प्रभु को पता चला कि प्रभुपाद मिलना चाहते हैं, लेकिन वो रहते थे 600 किलोमीटर दूर जर्मनी से। तो पृथु प्रभु गए वहां पे, 600 किलोमीटर दूर थे, रहते थे वहां पे। उनके घर गए, उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि ये मॉन्क के वेश में है। वो डर गई देखकर कि कहां से है, कौन है आप। उन्होंने कहा आप डरिए मत, उन्होंने कहा कि माता जी आप डरिए मत, आई एम ए मॉन्क और मैं आपके पति देव हिनीगर से मिलने आप। उन्होंने कहा है तो सही घर में, लेकिन अभी उनकी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे बेड रिडन है। ऊपर मिलने गए तो 6 महीने के लिए लगातार वो कोमा में, 6 months ये असली घटना है। प्रभुपाद की कृपा देखिए अब, जब प्रभुपाद की जब कृपा हो जाती है तो फिर ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल ही भक्त नहीं था कभी, ऐसा व्यक्ति भी जो है उसके ऊपर भी कृष्ण की कृपा हो जाती है। आप देखिए तो ये भगवदगीता लेके गए थे साथ में और भगवदगीता उन्होंने दिखाई और भी छाती में रखा, भगवदगीता को उस व्यक्ति की छाती में रखा, आंखें बंद थी उसकी और जो छाती में रखा उसने आंखें खोल ली। 6 महीने के बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली और आंखें खोलकर उसने गीता को पकड़ा। उसने कहा भगवदगीता भगवदगीता भगवदगीता, आई नो दिस बुक आई नो दिस बुक आई नो दिस बुक, 3 बार उसने कहा। उसके बाद फिर उसने आंखें बंद कर ली और कुछ ही दिनों के बाद उसने शरीर छोड़ा। 6 महीने तक उस व्यक्ति ने आंखें नहीं खोली थी, उसको कोमा हो गया था, कोमा में चला गया था वो। प्रभुपाद की गीता जब रखी गई छाती में तो उसकी आंखें खुल गई और उसने पहचान ली भगवदगीता है। यह होती है कृष्ण की कृपा। सब कुछ छीन लिया भगवान ने उस व्यक्ति का, लेकिन जहां शुद्ध भक्त ने याद किया उस व्यक्ति को, केवल याद करने मात्र से, प्रभुपाद ने केवल याद किया उस व्यक्ति को, याद करने मात्र से कृष्ण की कृपा होगी। देखिए यह है शुद्ध भक्त का प्रभाव, यह है शुद्ध भक्त की कृपा। इसलिए कहने का मतलब यह है हमारा, अगर हम जीवन भर समर्पित भावना से कष्टों को सहते हुए अगर सेवा में लगे रहेंगे, आप देखेंगे क्या होगा जिंदा, आप देखेंगे अंतिम समय में भगवान हमें याद करेंगे। शायद रामानुजाचार्य ने पूछा था, उन्हें पूछा था किसी से कि आप वरदराज से पूछ के बताइए मुझे कि क्या मैं उनका स्मरण अंतिम समय में कर पाऊंगा। तो उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि उनको मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनको याद करूंगा। क्या बोला भगवान ने कि मैं उनको याद करूंगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कष्ट में जीवन बीत भी गया और जीवन के अंतकाल में भी बहुत कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने जीवन भर भक्ति की है भगवान हमें याद करेंगे। जैसे कि राणा कुलुक्षेत्र बोल रहे हैं मुकुंद माला सूत्र में, बोल रहे क्या बोल रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज बंशरांतम अद्वैव वे विशद मानस राज हमसहा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधो नो विधौ स्मरणम कुतस्थे। जीवन के अंतकाल में कंठ जो है कफवात और पित्त से भर जाएगा, उस समय मैं कैसा उसका स्मरण कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा ये मन हंसरूपी मन जो है इसको आप अभी इसी समय अपने चरण कमलों में जकड़ लीजिए। सारा कुरुक्षेत्र प्रार्थना करते तो वायु पुराण में या अग्नि पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है जिसने जीवन भर मेरी भक्ति की है, श्रवण कीर्तन किया है, सेवा की है, जीवन के अंत काल में अगर उसका कंठ कफवात फिर से भर जाता है, वो उच्चारण नहीं कर पाता है मेरे नामों का, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उसको शक्ति प्रदान करूंगा जिसके द्वारा वो मेरा स्मरण कर पाएगा। इसका उत्तर दिया है भगवान। तो ये कृष्ण भक्ति कभी बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। ये बस सोचिए कि भगवान हमारा छीन लेंगे सब कुछ। छीनते भगवान है तो देते बहुत कुछ है। इतना छीनेंगे तो इतना दे देंगे आप, तो उनको छीने दीजिए। वो हरि है, उनका नाम ही हरि है, हर लेते हैं सब कुछ, हरने दीजिए। नहीं, श्रीमती राधारानी कौन है जानते हैं आप? श्रीमती राधारानी है जो कृष्ण के मन को भी हर लेती है, इसलिए हरे कृष्णा बोलते हैं हम। हरे कृष्णा का मतलब एक अर्थ ये भी है, जो राधारानी, वो राधारानी जो कृष्ण के मन को हर लेती है। तो ये हरने का काम आध्यात्मिक जगत में चलता है, और कृष्ण इसलिए हरि है, वो हरेंगे तो उनको करने दीजिए वो अपना काम। और हमें समर्पित भाव से जो है इस बात को स्वीकार करना होगा, जिस तरह से बलि महाराज ने स्वीकार किया है, तो हमारे मनुष्य जीवन जो है सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया और भक्तों का निश्चित रूप से उत्साह बढ़ा। क्योंकि प्रभु जी कई बार क्या होता है कि जब हम नए लोगों को प्रीच करते हैं तो वो भगवान की इस कृपा को अपने मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरा करने के लिए समझने की, तो देख उस मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर पूरी हो उसको कृपा मानते हैं कि भाई कोई बीमार चल रहा है मैं भक्ति करने लगा मैं ठीक हो जाऊँ, कोई गरीबी में है तो मुझे पैसे मिल जाए, तो इसको फिर कैसे उनको?
लोग ऐसे सोचते हैं कि गरीबी को ठीक किया जाता है तो वो कृपा है, और नौकरी नहीं थी नौकरी मिल गई वो कृपा है, शादी नहीं हुई थी शादी हो गई ये कृपा है, इन सबको कृपा मानते हैं सामान्य रूप से। और यह सब छीन जाए तो ये क्या है, शाप है, सब कुछ छीन लिया भगवान। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपको डायबिटीज है और कोई आपको गुलाब का जामुन खिला रहा है, गुलाब जामुन कोई खिला तो डायबिटीज जब होता है नहीं, बिल्कुल वैसे ही। तो जिन लोगों को धन चाहिए तो धन मिल रहा है, अगर घर चाहिए तो घर मिल रहा है, नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट को गुलाब जामुन खिलाना, ले लो कृपा है गुलाब जामुन तो स्वाद ही होगा, स्वादिष्ट तो लगेगा ही जब खाएंगे उसको, जीवा में रखेंगे तो टेस्टी तो लगेगा, लेकिन अंदर जाके वो आपके लिए जहर है। इसलिए जो मूर्ख लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, समझाना पड़ेगा भक्तों को कि आप मूर्ख हो गुलाब जामुन खा रहे हो मत खाओ, करेला खाओ हम देंगे आपको सस्ते दाम में देंगे, करेला भक्त करेला देते हैं, गुलाब जामुन दे ले रहे हो इससे और बीमार पड़ जाओगे, आओ हमारे मंदिर में आपको करेले की सब्जी खिलाएंगे हम, ये है असली दवा आपके लिए, और साथ में इंजेक्शन भी लगाएंगे महामंत्र का, ये औषधि है, ये औषधि है, ये डाइट है, डाइट है करेला और औषधि है हरिनाम, दोनों मिलेगा आपको इस कॉल मंदिर में, ठीक है? फिर और बहुत कुछ करेंगे बाद में बताएंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण बोले, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जी जैसे आपने बताया कि कई बार भक्त की के जो स्मरण है वो हमारी असहाय अवस्था में डिपेंड करता है कि हम असहाय अवस्था में स्मरण अच्छा कर पाएंगे, तो कई बार कष्ट या जो स्थिति होती है वो इतनी प्रचंड होती है उस स्थिति में हम उस स्थिति में ही डूब जाते हैं, मतलब उससे निकल नहीं पाते, तो हमें उस स्थिति में क्या प्रार्थना
भक्तों का संग करना चाहिए उस समय?
उस स्थिति में हर समय भक्तों का संग नहीं है, हम बाहर हैं तो उससे
ग्रंथों का संग करना चाहिए, जैसे बलि महाराज की कथा है, पांडवों की कथा है, प्रहलाद महाराज की कथा है, इसका लाभ उठाना पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा ही ना। अगर आप बीमार हैं आप बोलेंगे मैं इतना बीमार हूं कि मैं इलाज नहीं कर सकता हूं, ऐसा होता है कभी? बहुत अधिक बीमार है तो आपको फिर ले जाएंगे उसमें क्या कहते हैं पलंग में लिटा के और बांध के हाथ पांव और एम्बुलेंस में रखे लेके जाएंगे, इलाज तो करना ही पड़ेगा, मैं उठ नहीं सकता बिस्तर से, इस अमल ने थोड़ा कि इलाज नहीं होगा, दो चार लोग पकड़ के मेरे को लेके जाएंगे, जैसे पापी व्यक्ति को यमदूत लेके जाते हैं, ऐसे दो चार लोग पकड़ के मेरे अस्पताल लेके जाएंगे। इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, और दवा खा सकते हो दवाई खा लो, इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से जब ऐसी अवस्था में होते हैं तो हमें सहारा लेना पड़ेगा किसी ना किसी बात का, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता, अगर फिर तो बीमारी रहेंगे, फिर ठीक है बीमारी रहना बीमारी रहो, कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी आपको।
क्या प्रार्थना करनी चाहिए उस टाइम, क्या प्रार्थना करनी चाहिए?
प्रार्थना करनी क्या चाहिए, नहीं प्रार्थना अपने आप होगी आपको, जब इंजेक्शन लगेगा तो हाथ जोड़ेंगे आप कृष्ण के साथ, उसमें पूछिए मत प्रार्थना क्या करनी है, प्रार्थना अपने आप निकलेगी देखना, प्रार्थना अपने आप निकलती है। अगर आपको प्रकृति का बुलावा आ जाए, नेचर्स कॉल, और पता चला कि टॉयलेट बंद पड़ा है और वो भाई साहब आधे घंटे बाद निकलेंगे, तो प्रार्थना निकलेगी नहीं निकलेगी? नॉक करेंगे बार बार, प्रभु जी आपसे प्रार्थना है जल्दी निकलिए बाहर, बोलेंगे ना बोलेंगे, अपने आप निकलती है प्रार्थना। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको, तो इस तरह से कई एक्सपीरियंसेस हैं जीवन में, असहाय अवस्था में प्रार्थना अपने आप निकलती है। प्रार्थना क्या करना चाहिए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की।